संघ की कार्यपालिका। मैं निशांत सिंह। प्रथम टॉपिक, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। संघ की कार्यपालिका के शीर्ष पर भारत का राष्ट्रपति है। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से निर्वाचित होता है, अर्थात अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से निर्वाचनगण द्वारा। निर्वाचनगण में होंगे क, संसद के दोनों सदस्यों में निर्वाचन सदस्य, ख, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ग, दिल्ली और पांडिचेरी संघ राजक्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यह अनुच्छेद 54 में दिया गया है। जहां तक हो सके निर्वाचन में भिन्न भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के प्रत्येक राज्य की जनसंख्या और विधानसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के अनुसार एक रूपता होगी। संघ और समस्त राज्यों के बीच समतुल्यता रखी जाएगी। अनुच्छेद 55। दूसरे शर्त यह सुनिश्चित करने के लिए है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के निर्वाचन गण में समस्त राज्यों के मत इस देश की जनता के मत के बराबर होंगे। इस प्रकार राष्ट्रपति पद का भी प्रतिनिधि होगा और विभिन्न राज्यों में लोगों का प्रतिनिधि भी होगा। इससे परिसंघ प्रणाली में राज्यों की परिस्थिति को मान्यता मिलती है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की इस आधार पर आलोचना की गई है कि सार्वजनिक मतदान प्रणाली के लोकतांत्रिक आदर्श तक नहीं पहुंचती, किंतु संविधान के रचनाकारों ने अप्रत्यक्ष निर्वाचन का इन आधारों पर समर्थन किया है। पहला, 51 करोड़ लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के समय शक्ति और धन बहुत व्यय होगा। दूसरा, संविधान द्वारा प्रारंभ की गई उत्तरदायी सरकार की प्रणाली में वास्तविक शक्ति तो मंत्रिमंडल में ही निहित होगी, इसलिए राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचन करना और फिर उसे वास्तविक शक्ति न देना विचित्र सा होगा। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह क, भारत का नागरिक है, ख, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, ग, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहिर्त है, और घ, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन या उक्त सरकारों में से किसी में के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं करता है। अनुच्छेद 58। किंतु संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल अथवा संघ या किसी राज्य का मंत्री राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए निर्हित नहीं होगा। यह अनुच्छेद 58 का है। राष्ट्रपति की पदावधि पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की होती है, किंतु वह पुनर्निर्वाचन का पात्र है। अनुच्छेद 56 और 57। 5 वर्ष के भीतर राष्ट्रपति की पदावधि 2 प्रकार से समाप्त होती है। पहला, उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पत्र त्याग पत्र करके। दूसरा, महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा संविधान के अतिक्रमण के लिए हटाए जाने पर महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है, जो अनुच्छेद 61(1) में उल्लिखित है, वह संविधान का अतिक्रमण। महाभियोग न्यायी कल्प प्रक्रिया है जो संसद में चलाई जाती है। संसद का कोई भी सदन दूसरे सदन में संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाएगा, दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा, किंतु कोई सदन तब तक आरोप नहीं लगा सकता जब तक कि 14 दिन की लिखित सूचना देकर सदन की कुल संख्या के कम से कम 1/4 के हस्ताक्षर करके प्रस्तावना अंतर्विष्ट करने वाला संकल्प प्रस्तावित नहीं किया गया है, और ख, उस सदन की कुल संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित नहीं किया गया है। राष्ट्रपति को ऐसे अन्वेषण में उपस्थित होने पर अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा। यदि ऐसे अन्वेषण के परिणाम स्वरूप यह घोषित करने वाला संकल्प की राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाया गया आरोपित सिद्ध हो गया, आरोप का अन्वेषण करने या कराने वाले सदन की कुल संख्या के कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो ऐसे संकल्प का प्रभाव उसके द्वारा पारित किए जाने की तारीख से राष्ट्रपति को हटाना होगा। अनुच्छेद 61। संविधान में राष्ट्रपति को हटाने का ढंग और आधार दिए गए हैं, इसलिए उसे अनुच्छेद 56 और 61 के उपबंधों के अनुसार महाभियोग के सिवाय किसी और ढंग से नहीं हटाया जा सकता। राष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, और यदि संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। राष्ट्रपति लाभ का कोई अन्य पद ग्रहण नहीं करेगा। अनुच्छेद 59(1) और (2) राष्ट्रपति बिना किराए या दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा, और ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का भी जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, और जब तक कि इस नियमित इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता, तब तक ऐसी उपलब्धियां, भत्तों और विशेषाधिकारों का जो संविधान की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, हकदार होगा। राष्ट्रपति पेंशन अधिनियम 1998 बनाकर राष्ट्रपति की उपलब्धियां बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रति मास कर दी गई हैं। राष्ट्रपति की उपलब्धियां और पेंशन उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। यह अनुच्छेद 59(3) में है। उपयुक्त संदर्भित संशोधन अधिनियम 1998 में यह उपबंध है कि जिस व्यक्ति ने राष्ट्रपति पद का धारण किया है, उसे पदावधि की समाप्ति पर या पद त्याग देने पर 30,000-3 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी जाएगी। परंतु जब कि वह पुनः उस पद के लिए निर्वाचित न हुआ हो। राष्ट्रपति के पद में रिक्त निम्नलिखित रीति से होगी। पहला, 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर, दूसरा मृत्यु से, तीसरा पत्र त्याग से, चौथा महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर, और पांचवा तथा अंतिम अन्यथा जैसे राष्ट्रपति के रूस में निर्वाचन के अपास्त किए जाने पर। यह अनुच्छेद 65(1) का है। क, जब रिक्त राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई है, तो निर्वाचन पदावधि की समाप्ति के पहले ही कर लिया जाएगा। अनुच्छेद 62(1) किंतु उसे पूरा करने में कोई विलंब हो जाता है, तो राज्य अंतराल न होने पाए, इसलिए यह उपबंध है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद धारण नहीं कर लेता। अनुच्छेद 56(1) में (ग) ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा। ख, पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में निर्वाचन रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा। ऐसी रिक्ति होने पर यथा राष्ट्रपति की मृत्यु पर उपराष्ट्रपति तुरंत राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अनुच्छेद 65(ए) यह कहने की आवश्यकता नहीं है जो नया राष्ट्रपति निर्वाचित होगा वह पद ग्रहण करने की तारीख से पूरे 5 वर्ष की पदावधि तक पद धारण करने का हकदार होगा। ग, स्थायी रिक्त के अतिरिक्त स्थायी रिक्ति के अतिरिक्त यह भी हो सकता है कि राष्ट्रपति अस्थायी रूप से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो। यह भारत के बाहर अनुपस्थिति के कारण, बीमारी या अन्य कारण से हो सकता है। ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति उसके कृत्यों का उस तारीख तक निर्वहन करेगा जिस तारीख को राष्ट्रपति अपने कृत्यों को फिर से संभालता है। अनुच्छेद 65(2) राष्ट्रपति के सम्मान में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी अप्रत्यक्ष होगा और अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा, किंतु उसका निर्वाचन राष्ट्रपति से भिन्न होगा क्योंकि उसमें राज्य विधानमंडल भाग नहीं लेंगे। उपराष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों से मिलकर बनने वाले निर्वाचन गण के सदस्यों से निर्वाचित होगा। अनुच्छेद 66 अंडर ब्रैकेट 1। राष्ट्रपति के समान ही उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हत होने के लिए व्यक्ति को क भारत का नागरिक तथा ख 35 वर्ष से ऊपर की आयु का होना चाहिए और ग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या संघ या किसी राज्य के मंत्री का पद छोड़कर और कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। यह अनुच्छेद 66 में दिया गया है। राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति को लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अर्हत होना चाहिए, किंतु उपराष्ट्रपति होने के लिए राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अर्हत होना चाहिए। इस भिन्नता के कारण स्पष्ट है, उपराष्ट्रपति सामान्यतः तथा राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। संघ या राज्य के विभिन्न मंडल के किसी सदस्य के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, किंतु ये दो पद एक साथ धारण नहीं किए जा सकते। यदि किसी विधान मंडल का सदस्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है, तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण करने की तारीख से रिक्त कर दिया है। यह अनुच्छेद 69 अंडर ब्रैकेट 1 का है और 66 अंडर ब्रैकेट 2 का भी है। उपराष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष है। उनका पद नियत पदावधि के पहले त्यागपत्र या हटाए जाने से रिक्त हो सकता है। वह राज्यसभा के ऐसे संकल्प से हटाया जाता है जिसे राज्यसभा के सदस्यों ने बहुमत से पारित किया है और लोकसभा जिसे सहमत है, उसे हटाए जाने के लिए महाभियोग आवश्यक नहीं है। यद्यपि उपराष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र बनने के लिए अनुच्छेद 57 के तत्समान कोई उपबंध नहीं है, किंतु अनुच्छेद 66 के परंतु से यह प्रतीत होता है कि उपराष्ट्रपति निर्वाचन के लिए पात्र है। डॉक्टर राधाकृष्णन 1997 में इस पद के लिए दोबारा निर्वाचित किए गए थे। ऐसा उदाहरण है, राष्ट्रपति के पश्चात पश्चात उपराष्ट्रपति सर्वोच्च पदाधिकारी है। देखिए सारणी 9। उपराष्ट्रपति के पद के साथ कोई कृत्य नहीं जुड़े हैं। उपराष्ट्रपति का सामान्य कृत्य है पदेन राज्य का सभा का सभापति होना। यह राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग, पद से हटाए जाने या अन्य कारण से उसके पद में रिक्ति होती है, तो जब तक नया राष्ट्रपति निर्वाचित होकर पद ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यह अनुच्छेद 65 का अंडर ब्रैकेट 1 है। जब राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, तब उपराष्ट्रपति उसके कृत्यों का निर्वहन करता है। यह अनुच्छेद 65 अंडर ब्रैकेट 2 में है। संविधान में यह अवधारणा करने के लिए कि कब राष्ट्रपति अनुपस्थित या ऐसे ही कारणवश अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, कोई तंत्र विहित नहीं किया गया है। अतएव इस विषय में कौन पहल करे, यह बड़ा संवेदनशील मामला बन जाता है। यह ध्यान देने योग्य है कि 20 जून 1960 के पहले संविधान के इस उपबंध का कोई उपयोग नहीं किया गया था। यद्यपि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1958 में अपनी विदेश यात्रा में काफ़ी समय भारत के बाहर रहे। जून 1960 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 15 दिन की सोवियत संघ की यात्रा के समय पहले पहल डॉक्टर राधाकृष्ण को राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करने का अवसर दिया गया। दूसरा अवसर मई 1961 में आया, जब राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद गंभीर रूप से बीमार होकर अपने कृत्यों के निर्वहन में असमर्थ हो गए। कुछ दिनों के संकट के पश्चात राष्ट्रपति ने स्वयं यह सुझाव दिया कि जब तक वे स्वस्थ नहीं हो जाते, तब तक उपराष्ट्रपति उनके कृत्यों का निर्वहन करें। ऐसा प्रतीत होता है कि यह अवधारणा करने की शक्ति की कब राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है और कब वह अपने कर्तव्यों को पुनः ग्रहण कर लेगा, राष्ट्रपति में ही है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पदों में मृत्यु, पत्र त्याग, हटाए जाने आदि से रिक्तता के कारण भारत का मुख्य न्यायमूर्ति और उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का ज्येष्ठतम न्यायाधीश चीफ जस्टिस जो उपलब्ध हो राष्ट्रपति के कृत्यों का तब तक निर्वहन करेगा जब तक नया राष्ट्रपति निर्वाचित न हो जाए। 1969 में डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति की मृत्यु के पश्चात उपराष्ट्रपति श्री वीवी गिरी ने पत्र त्याग कर दिया। तब मुख्य न्यायमूर्ति श्री हिदायतुल्ला ने 20/7/1969 से कृत्यों का निर्वहन किया था। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है तब उसे राष्ट्रपति की उपलब्धियां मिलती हैं, अन्यथा उसे राज्यसभा के सभापति का वेतन मिलता है। जब उपराष्ट्रपति इस प्रकार राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है तो वह राज्यसभा के सभापति के कृत्यों का निर्वहन नहीं कर सकता। तब राज्यसभा का उपसभापति सभापति के रूप में कार्य करेगा। अनुच्छेद 91 का था यह। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित संदेह और विवाद का निर्धारण अनुच्छेद 71 का विषय है। यह इस प्रकार है। क, ऐसे विवादों का विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी अधिकारिता अनन्य और अंतिम होगी। ख, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करने वाले निर्वाचन गण के सदस्यों में विद्यमान किसी रिक्ति के स्थान पर कोई विवाद नहीं होगा। ग, यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे विनिश्चय की तारीख से पहले किए गए कार्य अविधिमान्य नहीं होंगे। घ, ऐसे विवादों को छोड़कर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषयों का विनिमयन संसद विधि द्वारा कर सकेगी। संसद ने इस निमित्त राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 बनाया है। दूसरा, राष्ट्रपति की शक्तियां और कर्तव्य। इससे पहले हम अभी जान रहे थे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में, अब दूसरा टॉपिक राष्ट्रपति की शक्तियां और कर्तव्य। संविधान यह कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 53, इस प्रकार भारत का राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होगा। कार्यपालिका शक्ति का प्रथम अर्थ है विधानमंडल द्वारा अधिनियमित विधियों का कार्यपालन, किंतु आधुनिक राज्य में कार्यपालिका का कार्य उतना सादा नहीं है जितना अरस्तु के युग में था। राज्यों के कृत्यों में अनेक गुना विस्तार हो जाने के कारण व्यवहार में सभी अवशिष्ट कृत्य कार्यपालिका के हाथों में पहुंच गए हैं। अतएव कार्यपालिका शक्ति की संक्षिप्त भाषा यह हो सकती है कि वह सरकार की काम काज करने की शक्ति है या राज्य के क्रियाकलाप के प्रशासन की शक्ति है, जिसमें वे शक्तियां नहीं है जो संविधान द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी में निहित है। कार्यपालिका शक्ति की परिधि का हमारे उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार वर्णन किया है। कार्यपालिका कृत्य का क्या अर्थ है और उसकी क्या विवशा है, इसका सर्वग्राही परिभाषा कर पाना संभव नहीं है। विधायी और न्यायिक शक्ति को निकाल देने पर शासकीय कृत्यों में जो भी अवशिष्ट रहता है वही सामान्यतः कार्यपालिका का कृत्य है, किंतु यह संविधान या किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए हैं। कार्यपालिका कृत्य में दोनों आते हैं, निधि निर्धारण और उसकी कार्य में परिणति, व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक और आर्थिक कल्याण का प्रोन्नयन, विदेश नीति का मार्गदर्शन, राज्य के साथ प्रशासन को चलाना या उसका अधीक्षण। भारत के राष्ट्रपति की विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण करने के पहले हम उन संविधान बंधनों को देखना होगा जिसके अधीन वह कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करता है। पहले, उसे इन शक्तियों का प्रयोग संविधान के अनुसार करना चाहिए। अनुच्छेद 53 _1, अनुच्छेद 75 _1। स्पष्ट रूप से यह अपेक्षा करता है कि राष्ट्रपति मंत्रियों को प्रधानमंत्री की सलाह पर ही नियुक्त कर सकेगा। यदि राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करता मंत्री नियुक्त करता है जिसका नाम प्रधानमंत्री द्वारा दी गई सूची में नहीं है, तो यह संविधान का उल्लंघन होगा। यदि राष्ट्रपति संविधान के किसी आज्ञापक उपबंध का उल्लंघन करता है, तो उसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकेगा। दूसरे, भारत के राष्ट्रपति की कार्यकाली पालिका शक्ति का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार ही किया जा सकेगा। यह अनुच्छेद 71 (1) में दिया गया है। पहला, 1976 के पहले संविधान में यह अभिव्यक्त उपबंध नहीं था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए आबद्ध है। यद्यपि न्यायालयों ने यह सुस्थिर कर दिया था कि राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालक नहीं है, बल्कि संविधान प्रधान है, जो जब तक मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त है, तब तक उसकी सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए आबद्ध है। यह अनुच्छेद 75(3). 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के अनुच्छेद 74(1) का संशोधन करने की स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। यथा संशोधित अनुच्छेद 74(1) इस प्रकार है, राष्ट्रपति को अपनी सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। कार्य करेगा शब्द प्रयोग से राष्ट्रपति मंत्रियों की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए आबद्ध है। दूसरा, जनता सरकार ने 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित अनुच्छेद 74(1) के उपयुक्त पाठ को बने रहने दिया, किंतु 44वें संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 74(1) में एक परंतुक जोड़ा गया जो इस प्रकार है, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा, और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। 44वें संशोधन का परिणाम यह है कि कुछ थोड़े से मामलों को छोड़कर जो उच्चतम न्यायालय ने निर्देशित किए हैं, जिन पर हम अभी विचार करेंगे, राष्ट्रपति को किसी मामले में अपने विवेकानुसार कार्य करने की शक्ति नहीं है। उसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह के अनुसार कार्य करना होगा। ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करने से इनकार करने पर उस पर संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकेगा। राष्ट्रपति को एक शक्ति यह दी गई है कि वह किसी विषय को पुनर्विचार के लिए भेज सकेगा। यह मंत्रिपरिषद अपनी पहले वाली सलाह पर ही टिकी रहती है, तो राष्ट्रपति के पास उसके अनुसार कार्य करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रहता। पुनर्विचार के लिए वापस करने की शक्ति का प्रयोग एक विषय के बारे में एक बार ही किया जा सकता है। अतएव यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ उसके मंत्रियों की शक्तियाँ हैं, उसी प्रकार जैसे इंग्लैंड के सम्राट के परमाधिकार जनता के विशेषाधिकार बन गए हैं। डाइसी इसे कहते हैं। संघ सरकार की शक्तियों की खोज करने के लिए संविधान के उन उपबंधों का अध्ययन करना होगा जो राष्ट्रपति में शक्तियां और कृत्य निहित करते हैं। आधुनिक राज्य में कार्यपालिका शक्ति अभिव्यक्ति में जो शक्तियां आती हैं, उन्हें राजनीति शास्त्र के विद्वानों ने निम्नलिखित शीर्षों में विभाजित किया है। क, प्रशासनिक शक्ति अर्थात विधियों का कार्यकरण और सरकार के विभागों का प्रशासन। ख, सैन्य शक्ति अर्थात सैन्य बलों का समादेश और युद्ध संचालन। ग, विधायी शक्ति अर्थात विधानमंडल को आहूत करना, सत्रावसान करना आदि, और विधान प्रारंभ करना तथा अनुमति देना आदि। घ, न्यायिक शक्ति अर्थात अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्तियों को क्षमादान, प्रविलंब आदि। भारत का संविधान विभिन्न उपबंधों के द्वारा पूर्वोक्त मतदान मर्यादाओं के अधीन रहते हुए इन शीर्षों के अधीन राष्ट्रपति के हाथों में शक्ति निहित करता है। पहला, प्रशासन शक्ति। भारत का राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति के समान वास्तविक कार्यपालक प्रधान नहीं है, इसलिए प्रशासन के विषय में राष्ट्रपति को कोई प्रशासनिक कृत्यों का वहन नहीं करना होता। उसे सरकार के विभागों का नियंत्रण और पर्यवेक्षण करने की वैसी शक्ति नहीं है जैसी अमेरिकी राष्ट्रपति को है। संघ की सरकार के विभिन्न विभागों का कार्य उसके प्रभारी मंत्री के नियंत्रण और उत्तरदायित्व में किया जाता है, किंतु राष्ट्रपति प्रशासन का औपचारिक प्रधान रहेगा। अतएव संघ की कार्यपालिका का सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किया जाना चाहिए। कोई आदेश या लिखित भारत सरकार ने निर्देशित की है, माफ कीजिएगा, निष्पादित की है या नहीं, यह जानने का एक ही ढंग है, वह यह कि क्या राष्ट्रपति के नाम से लिखी गई है और ऐसी रीति में अधिप्रमाणित की गई है जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में विहित है। अनुच्छेद 77 में यह था। इसी कारण से भारत सरकार की ओर से की गई सभी संविदाएं और संपत्ति संबंधी हस्तांतरण पत्र राष्ट्रपति द्वारा किए गए कहे जाए जाने चाहिए और ऐसी रीति में निष्पादित होने के चाहिए जो वह निर्देशित या प्राधिकृत करे। अनुच्छेद 299 का है यह। राष्ट्रपति प्रशासन का वास्तविक प्रधान नहीं है, यद्यपि फिर भी संघ के सभी अधिकारी उसके अधीनस्थ होंगे। अनुच्छेद 53 का एक, और उसे संघ की कार्यकलाप की जानकारी पाने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 78 का ख में वर्णित है यह। प्रशासनिक शक्ति में राज्य के उच्च पदाधिकारियों को नियुक्त करने और उन्हें हटाने की भी शक्ति है। हमारे संविधान के अधीन राष्ट्रपति को इन्हें नियुक्त करने की शक्ति है। पहला, भारत का प्रधानमंत्री। दूसरा, संघ के अन्य मंत्री। तीसरा, भारत का महान्यायवादी। चौथा, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। पांचवा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। छठा, राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। सातवां, राज्य के राज्यपाल। आठवां, जल प्रदाय में हस्तक्षेप का अन्वेषण करने के लिए आयोग। नौवां, वित्त आयोग। दसवां, संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों के समूहों के लिए संयुक्त आयोग। 11, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयोग के अन्य सदस्य। 12, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी। 13, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर प्रतिवेदन देने के लिए आयोग। 14, पिछले वर्गों की दशाओं में अन्वेषण करने के लिए आयोग। 15, राज्यसभा आयोग। 16, भाषाई अल्पसंख्यक आयोग। कुछ नियुक्तियां करने में संविधान में यह अपेक्षा है कि राष्ट्रपति अपने मंत्रियों से भिन्न कुछ व्यक्तियों से परामर्श करेगा, जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से तथा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करेगा जो वह आवश्यक समझे। यह अनुच्छेद 124 अंडर ब्रैकेट 2 में दिया गया है। इन शर्तों के बारे में हम विभिन्न पदों के संबंध में उचित स्थानों पर विचार करेंगे। राष्ट्रपति को इन्हें पद से हटाने की शक्ति है। पहला, मंत्री। दूसरा, भारत का महान्यायवादी। तीसरा, राज्य का राज्यपाल। चौथा, उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर संघ या किसी राज्य के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य। पांचवा, संसद के समावेदन पर उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या निर्वाचन आयुक्त। यह ध्यान देने योग्य बात है कि उपयुक्त विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति करने के लिए अतिरिक्त भारत के संविधान में राष्ट्रपति को संघ के कनिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति की कोई आंतरिक शक्ति नहीं है, जैसे कि अमेरिकी संविधान में है। इस प्रकार भारत के संविधान में अमेरिका और की अवांछनीय पद पुरस्कार पद्धति से बच गया। उस पद्धति के अनुसार संघ के 20% सिविल पद राष्ट्रपति द्वारा सिविल सेवा आयोग के परामर्श किए बिना भर जाते हैं, जो पार्टी के प्रति निष्ठा के पुरस्कार के रूप में होते हैं। भारत के संविधान में इस दूषण से दूर रहने का प्रयत्न किया गया है। इसके लिए संघ लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा को संसद का विधायी विषय बनाया गया है। नियुक्ति के मामलों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है। यह अनुच्छेद 320 अंडर ब्रैकेट 3 में दिया गया है, किंतु थोड़े से पद ही इसके लिए अपवाद हैं। यदि किसी मामले में राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग की सलाह स्वीकार करने में असमर्थ है, तो सरकार को उसका स्पष्टीकरण संसद में देना होगा। सिविल सेवकों के पद से हटाए जाने के विषय में यह स्थिति है कि संघ के अधीन सेवा करने वाले राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, किंतु राष्ट्रपति के प्रसाद के बारे में कुछ शर्तें और प्रक्रियाएं अधिकथित की गई हैं। इन्हें के अधीन प्रसाद का प्रयोग किया जा सकता सकेगा। अनुच्छेद 311 अंडर ब्रैकेट 2 में उपयुक्त बातें लिखी गई हैं। दूसरा, सैन्य शक्ति। भारत के राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां अमेरिकी राष्ट्रपति या इंग्लैंड के सम्राट की तुलना में कम है। रक्षा बलों का सर्वोत्तम समादेश राष्ट्रपति में निहित है, किंतु संविधान का यह अभिव्यक्त रूप से उपबंध करता है कि उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होगा। इसका यह अर्थ हुआ कि राष्ट्रपति को युद्ध या शांति की घोषणा करने या रक्षा बलों को अभिनियोजित करने की शक्ति है, किंतु संसद विधि द्वारा इन शक्तियों के प्रयोग को विनियमित करने या नियंत्रित कर सकती है। यह नहीं कहा जा सकता कि सर्वोच्च समादेष्टा के रूप में राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण के बाहर हैं, जैसा कि अमेरिका में है। दूसरे, संविधान में यह उपबंध है कि विधि के प्राधिकार के बिना कुछ कार्य नहीं किया जा सकता। अतएव इसका यह अर्थ होगा कि संसद की मंजूरी के बिना राष्ट्रपति ऐसे कार्य नहीं कर सकता है, उदाहरणार्थ वे कार्य जिसमें धन का व्यय होगा। यह अनुच्छेद 114 के अंडर ब्रैकेट 3 में दिया गया है, जैसे सैन्य बलों की भर्ती, प्रशिक्षण और अनुरक्षण। तीसरा, राजनयिक शक्ति। राजनयिक शक्ति एक व्यापक विषय है। कई बार इसे विदेश कार्य शक्ति के समानार्थी समझा जाता है, जिसमें वे सभी विषय आते हैं जो संघ को किसी विदेशी राज्य के संस्पर्श में लाते हैं। इन विषयों के बारे में और साथ ही संधियां करने और उन्हें क्रियान्वित करने के बारे में विधायी शक्ति संसद में है। चाहे इन बातों की अंतिम शक्ति संसद में हो, किंतु इन बातों में विधानमंडल प्रारंभ नहीं कर सकता। संसद के अनुसमर्थन के अधीन रहते हुए अन्य देशों से संधि और कराकर करने और करार करने का कार्य राष्ट्रपति को मंत्रियों की सलाह के अनुसार करना होगा। विधान के विषय के रूप में राजनयिक प्रतिनिधित्व संसद का विषय है, किंतु राज्य के प्रधान होने के नाते भारत का राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय क्रियाकलाप में भारत का प्रतिनिधि करेगा और अन्य देशों में भारत के प्रतिनिधि नियुक्त करने की और अन्य राज्यों के राजनयिक प्रतिनिधियों का ग्रहण करने की ऐसी शक्ति होगी जो संसद को मान्य हो। चौथा, विधायी शक्ति। इंग्लैंड के सम्राट के समान भारत का उपराष्ट्रपति भी संघ की संसद का अंग है। यह एक ऐसा स्थल है जिसमें भारत का संविधान अमेरिकी संविधान में स्वीकृत शक्तियों के पृथककरण के सिद्धांत से विचलन करता है। भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, जिनका प्रयोग मंत्रियों की सलाह पर ही होगा, अनुच्छेद 74 अंडर ब्रैकेट 1 में उपयुक्त बातें लिखी गई थी, कई प्रकार की हैं और उन पर निम्नलिखित शीर्षों की अधीन विचार किया जा सकता है। क, आहूत करना, शत्रावसान, विघटन। इंग्लैंड के सम्राट के समान हमारे राष्ट्रपति को संसद के सदनों को आहूत करने या उसके शत्रावसान करने और लोकसभा का विघटन करने की शक्ति है। गतिरोध हो जाने पर उसे संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहत करने की शक्ति है। यह अनुच्छेद 85 में दिया गया है। आरंभिक अभिभाषण। राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और संसद को उसके आह्वान के कारण बतलाएगा। अनुच्छेद 87 में उपयुक्त बातें दी गई थीं। गत 50 वर्षों के व्यवहार से यह प्रकट होता है कि आरंभिक भाषण का वही उपयोग होता है जो इंग्लैंड में सिंहासन से भाषण का होता है, अर्थात उस सत्र के लिए मंत्रिमंडल के कार्यक्रम की घोषणा और राजनयिक, राजनीतिक, साधारण नीति के या प्रशासन के विषयों पर चर्चा का सूत्रपात करना। प्रत्येक सदन को यह शक्ति है कि वह प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों द्वारा ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए समय नियत करें। ग, अभिभाषण करने और संदेश भेजने का अधिकार। प्रत्येक सत्र के आरंभ पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण करने के अधिकार के अतिरिक्त राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन में या एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा। यह अनुच्छेद 86(1) में दिया गया है। यह अधिकार इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, किंतु वहां इसका उपयोग समारोहों के लिए किया जाता है, अन्यथा नहीं। अभिभाषण करने के अधिकार के अतिरिक्त भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह संसद में उस समय जब विधेयक लंबित है, किसी विधेयक के संबंध में या किसी अन्य विषय के संबंध में संदेश किसी भी सदन को भेज सकेगा और वह सदन उस संदेश पर सुविधा अनुसार शीघ्रता से विचार करेगा। यह अनुच्छेद 86(2) में दी गई है। जॉर्ज तृतीय के समय से इंग्लैंड का सम्राट विधान बनाने में भाग लेने या उसे प्रभावित करने से विरत रहा है और अब संदेश केवल औपचारिक विषय में ही भेजे जाते हैं। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह कांग्रेस को किसी भी विधायी अध्युपाय की सिफारिश संदेश के माध्यम से करे, किंतु कांग्रेस उन्हें स्वीकार करने के लिए आबद्ध नहीं है। भारत के राष्ट्रपति को केवल विधायी विषयों के बारे में ही नहीं, अन्य विषयों के बारे में भी संदेश भेजने की शक्ति है। भारत की कार्यपालिका के विधान प्रधान का प्रतिनिधित्व संसद में उसके मंत्रियों द्वारा किया जाता है। इसलिए राष्ट्रपति को विधान के बारे में संदेश भेजने की जो शक्ति दी गई है वह निरर्थक सी मालूम होती है। राष्ट्रपति को मंत्रियों को नीति से भिन्न संदेश भेजने की स्वतंत्रता होने पर यह उचित होता, किंतु यदि ऐसी स्वतंत्रता होगी तो उससे राष्ट्रपति और मंत्रियों के बीच संघर्ष प्रारंभ हो जाएगा। यह ध्यान देने योग्य है कि हमारे संविधान के 46 वर्षों के कार्यकरण में राष्ट्रपति ने संसद को कोई संदेश नहीं भेजा और न ही प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात तथा प्रत्येक वर्ष के पहले सदन के आरंभ को छोड़कर किसी अन्य अवसर पर उसे संबोधित किया है। घ सदनों में सदस्यों का नाम निर्देशन। संसद के दोनों सदनों का गठन मुख्यतः निर्वाचन के द्वारा होता है, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, किंतु राष्ट्रपति को दोनों सदनों में कुछ सदस्यों को नाम निर्देशित करने की शक्ति दी जाती है। यह इस कारण पर है कि निर्वाचन की प्रतियोगी प्रणाली के माध्यम से कुछ हितों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो पाएगा। जैसे पहला, राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 ऐसे व्यक्तियों को नाम निर्दिष्ट करेगा जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक विषयों का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है। यह अनुच्छेद 80(1) में दी गई है। दूसरा, राष्ट्रपति को यह भी शक्ति दी गई है कि यदि उसकी यह राय है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह लोकसभा में उस समुदाय के 2 से अधिनिय दो से अनधिक सदस्य नाम निर्दिष्ट कर सकेगा। यह अनुच्छेद 331 में दी गई है। अंग संसद के समक्ष प्रतिवेदन आदि का रखा जाना। राष्ट्रपति की कुल प्रतिवेदन और कथनों को संसद के समक्ष रखने की शक्ति और कर्तव्य के माध्यम से वह संसद के संपर्क में आता है। इस प्रकार रखे जाने का उद्देश्य यह है कि संसद को उसकी कार्यवाही करने का अवसर प्राप्त हो। उदाहरणार्थ, राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह संसद के समक्ष यह दस्तावेज रखवाए। क वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट और अनुपूरक विवरण यदि कोई हो। ख भारत सरकार के लेखाओं के संबंध में नियंत्रण महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन। ग वित्त आयोग की सिफारिश और उसके साथ उन पर की गई कार्यवाही का स्पष्टीकरण ज्ञापन। घ संघ लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन और जहां आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई है वहां उसके कारण। अंग अनुसूचित जातियों और जनजातियों के विशेष अधिकारी का प्रतिवेदन। च पिछड़े वर्ग के आयोग का प्रतिवेदन। छ भाषाई अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारों का प्रतिवेदन। च विधान के लिए पूर्व मंजूरी। संविधान में यह अपेक्षा है कि कुछ विषयों पर विधान पुनः स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी या सिफारिश की अपेक्षा होगी। वैसे न्यायालय की किसी विधान को इस आधार पर अविधिमान्य नहीं घोषित कर सकते हैं कि पूर्व मंजूरी नहीं दी गई थी, यदि अंततोगत्वा राष्ट्रपति ने विधान को अनुमति दे दी है। यह अनुच्छेद 255 में निर्देशित है। ये विषय हैं, पहला नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन आदि, यह अनुच्छेद 3 में दिया गया है। ऐसे विधान की सिफारिश करने के लिए अनन्य शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है, जिससे वह ऐसा विधान प्रारंभ करने के पूर्व प्रभावित राज्यों के विचार प्राप्त कर सके। दूसरा, अनुच्छेद 31 क अंडर ब्रैकेट 1 में विनिर्दिष्ट विषयों से किसी का उपबंध करने के लिए विधेयक। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 31 क अंडर ब्रैकेट 1 में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी का उपबंध करने के लिए विधेयक। अनुच्छेद 31 क अंडर ब्रैकेट 1 का पड़ंतुक 1। 3, धन विधेयक। 4, कोई विधेयक जो सही अर्थों में धन का विधेयक नहीं है, किंतु जिससे भारत की संचित निधि में व्यय करना पड़ेगा। 5, कोई विधेयक जो ऐसा कराधान को प्रभावित करता है जिससे राज्य हितबद्ध है, या उस सिद्धांतों को प्रभावित करता है जिससे राज्यों को धन का वितरण किया जाता है, या आयकर के प्रयोजनों के लिए कृषि आय पद के लिए अर्थ में परिवर्तन करता है, या भाग 12 के अध्याय 1 के अधीन संघ के प्रयोजनों के लिए अभी अधिरोपित करता है, अधिभार अधिरोपित करता है। 6, व्यापार की स्वतंत्रता पर निर्बंधन अधिरोपित करने वाला राज्य विधेयक। 6, विधायन को अनुमति या वीटो। क, संघ विधान पर वीटो। कोई विधेयक भारत की संसद का अधिनियम तब तक नहीं बन सकता जब तक कि उसे राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिल जाती। जब दोनों सदनों से पारित किए जाने के पश्चात कोई विधेयक राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति निम्नलिखित 3 बातों में से कोई एक कर सकता है। पहला, वह यह घोषित कर सकता है कि वह विधेयक को अनुमति देता है। दूसरा, वह यह घोषित कर सकता है कि वह विधेयक को अनुमति विधारित करता है। तीसरा, यदि वह धन विधेयक नहीं है तो उसे सदन को इस संदेश के साथ लौटा सकेगा कि वे विधेयक पर पुनर्विचार करें। इसके साथ संशोधन के सुझाव का संदेश भी हो सकता है। धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया नहीं जा सकता। ऊपर तीसरे की दशा में यदि विधेयक सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति को अनिवार्यतः अनुमति देना होगा। यह अनुच्छेद 111 में निर्देशित है। साधारणतया कार्यपालिका को यह शक्ति प्रदान करने का उद्देश्य विधानमंडल द्वारा शीघ्रता और विचार किए बिना की गई कार्यवाही को रोकना होता है, किंतु ऐसी शक्ति की आवश्यकता तब समाप्त हो जाती है या कम हो जाती है जब स्वयं कार्यपालिका विधायन प्रारंभ करती है या संचालित करती है, जैसा कि संसदीय या मंत्रिमंडलीय प्रणाली में होता है। वस्तुस्थिति यह है कि सैद्धांतिक रूप से तो इंग्लैंड के सम्राट को वीटो की शक्ति है, किंतु उसका प्रयोग साम्राज्ञी एन के समय से किया ही नहीं गया, जहां कार्यपालिका और विधानमंडल एक दूसरे से पृथक और स्वाधीन है। वहां कार्यपालिका विधायन के लिए उत्तरदायी नहीं होती है। ऐसी स्थिति में यह उचित होगा कि उसे अवांछनीय विधायन रोकने के लिए कुछ नियंत्रण का अधिकार हो। इस प्रकार अमेरिका में राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति का अनेक कारणों से समर्थन किया गया है, जैसे कि राष्ट्रपति को अपने पद की आक्रामक विधायन से रक्षा करने के लिए, ख कोई ऐसा विधायन न बन जाए जो राष्ट्रपति की राय में असंवैधानिक हो। उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति है कि वह किसी कानून को असंवैधानिक होने के आधार पर बलित कर दे, किंतु वह इस शक्ति का प्रयोग संविधान के स्पष्ट उल्लंघन किए जाने पर ही कर सकता है, और वह भी तब जबकि उस अधिनियम के बन जाने के पश्चात कोई उचित कार्रवाई उसके समक्ष लाई जाती है। ग, ऐसे विधान को रोकने के लिए जिसे वह व्यवहारिक रूप से समीचीन नहीं मानता है, वह समझता है कि अमेरिकी जनता को मानस को प्रतिबिंबित नहीं करता। विधान पर प्रभाव के दृष्टिकोण से कार्यपालिका के वीटो का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है: आंतरिक, आत्यंतिक, विशेषित, निलंबनकारी और जेबी। ख, आत्यंतिक वीटो। इंग्लैंड के क्राउन के पास आत्यंतिक वीटो का परमाधिकार है। यह वह किसी विधेयक को अनुमति नहीं देता, तो संसद के मतों के होते हुए भी वह विधि नहीं बन सकता। मंत्रिमंडलीय प्रणाली के विकास के कारण सन 1700 से यह शक्ति लुप्त प्रयोग हो चुकी है। इस प्रणाली में सभी सरकारी विधायन को मंत्रिमंडल ही सदन में प्रारंभ करता है और संचालित करता है। व्यवहार और आचरण की दृष्टि से इंग्लैंड में वर्तमान काल में वीटो की कार्यपालिका शक्ति नहीं है। ग, विशेषित वीटो। वीटो विशेषित जब होता है जब विधानमंडल के असाधारण बहुमत से उसका अध्यारोहण किया जा सकता है, और उस बहुमत से विधेयक को कार्यपालिका के वीटो को रौंद कर अधिनियम बनाया जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का वीटो इसी वर्ग का है। जब राष्ट्रपति कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो वह उसकी अनुमति नहीं देता है, तो वह अपने आक्षेपों के कथन के साथ विधेयक को 10 दिन के भीतर कांग्रेस की उस शाखा को लौटाएगा जहां वह प्रारंभ हुआ था। तत्पश्चात हर एक सदन विधेयक पर पुनर्विचार करता है, और यदि वह प्रत्येक सदन द्वारा उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से स्वीकार कर लिया जाता है, तो वह इस बात के होते हुए भी विधि बन जाता है कि उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं है। जब विशेषित वीटो का अध्यारोहण हो जाता है, यदि 2/3 बहुमत नहीं मिलता तो वीटो बन जाता है और विधेयक विधि नहीं बन पाता। परिणाम स्वरूप विशेषित वीटो एक ऐसा माध्यम है जिससे कार्यपालिका विधान के दोष दिखाकर उस पर विधानमंडल से पुनर्विचार करा सकती है, किंतु अंत में विधानमंडल का असाधारण बहुमत ही अभिभावी होता है। इस प्रकार अमेरिका में जहां कार्यपालिका विधायिका को सत्रावसान, विघटन या अन्य किसी प्रकार से नियंत्रित नहीं कर सकती, वहां विशेषित वीटो एक उपयोगी साधन है। घ, निलंबनकारी वीटो। जब कोई कार्यपालिका वीटो इस प्रकार का होता है कि घ, निलंबनकारी वीटो। जब कोई कार्यपालिका वीटो इस प्रकार का होता है कि विधानमंडल का सामान्य बहुमत उसका अध्यारोहण कर सकता है, तो उसे निलंबनकारी वीटो कहते हैं। फ्रेंच राष्ट्रपति का वीटो इसी प्रकार का है। यदि पुनर्विचार करके संसद को उसे सादे बहुमत से पारित कर देती है, तो राष्ट्रपति को उसे प्रख्यापित करना होता है। अंग, जेबी वीटो। यह चौथा प्रकार का है, वीटो का जेबी वीटो। यह अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है। जब कोई विधेयक उसे प्रस्तुत किया जाता है, तो वह चाहे तो न तो उस पर हस्ताक्षर करे और न उसे 10 दिन के भीतर लौटाए। वह उसे अपनी मेज पर तब तक पड़े रहने दे जब तक कि 10 दिन की समय सीमा समाप्त नहीं हो जाती। यदि इस बीच राष्ट्रपति के विधेयक को प्रस्तुत किए जाने से 10 दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व कांग्रेस स्थगित हो जाती है, तो विधेयक अधिनियम नहीं बन पाता। इस ढंग को जेबी वीटो कहते हैं। कांग्रेस के अधिवेशन के अंतिम थोड़े से दिनों में राष्ट्रपति प्रयुक्त विधेयक पर अनुमति विधारित करके उसका विधि बनाना रोक सकता है। भारत के राष्ट्रपति का वीटो शक्ति अत्यंतिक, निलंबनकारी और जेबी वीटो का संयोजन है। पहला, यदि राष्ट्रपति यह घोषित करता है कि वह अनुमति रोक लेता है, तो इससे इंग्लैंड के समान ही विधेयक समाप्त हो जाएगा। ऐसा इनकार इंग्लैंड के मंत्रिमंडलीय प्रणाली में के उत्कर्ष के बाद लुप्त प्रयोग हो गया, क्योंकि उस प्रणाली में मंत्रिमंडल ही विधान प्रारंभ करता है और वीटो की सलाह देता है, किंतु ऐसा उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। भारत के संविधान में पूर्ण मंत्रिमंडलीय दायित्व होते हैं, होते हुए भी इस उपबंध को समाविष्ट किया गया है। सामान्यतया इस शक्ति का प्रयोग प्राइवेट सदस्यों के लिए ही किया जाएगा। सरकारी विधेयकों की दशा में ऐसी स्थिति की कल्पना की जा सकती है जिसमें विधेयक के पारित होने हो जाने के पश्चात और राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के पहले मंत्रिमंडल पद त्याग कर देता है और दूसरा मंत्रिमंडल जिसका संसद में बहुमत है राष्ट्रपति को उस विधेयक के विरुद्ध वीटो के प्रयोग की सलाह देता है। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति के लिए वीटो का प्रयोग संवैधानिक होगा यद्यपि वह विधेयक संसद ने सम्यक्तः पारित किया था। दूसरा, किंतु यदि अनुमति देने से स्पष्ट रूप से इनकार करने के स्थान पर राष्ट्रपति विधेयक को या उसके किसी भाग को पुनर्विचार के लिए भेजता है तो सामान्य बहुमत से विधेयक को पुनः पारित किए जाने पर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देने के लिए विवश होना पड़ेगा। भारत के राष्ट्रपति की यह शक्ति अमेरिका के विशेषित वीटो से भिन्न है। हमारे यहाँ लौटाए गए विधेयक को अधिनियमित करने के लिए असाधारण बहुमत आवश्यक नहीं है। भारत में राष्ट्रपति द्वारा लौटाए जाने का प्रभाव निलंबन मात्र होता है। जैसा ऊपर बताया जा चुका है कि यह शक्ति उन विधेयकों के संबंध में उपलब्ध नहीं है। तीसरा, ध्यान देने योग्य बात एक और बात यह है कि संविधान कोई समय सीमा विहित नहीं करता जिसके भीतर राष्ट्रपति विधेयक को अपनी अनुमति दे या इनकार करे या उसे वापस करे। अनुच्छेद 111 केवल यह कहता है कि यदि राष्ट्रपति विधेयक को लौटाना चाहता है तो वह विधेयक को उसे प्रस्तुत किए जाने के बाद यथाशीघ्र लौटा देगा। ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय सीमा के अभाव में भारत का राष्ट्रपति जे भी वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकेगा। इसके लिए उसे केवल यही करना होगा कि विधेयक को मेज पर पड़े रहने दे, विशेषकर तब जब वह पाता है कि मंत्रिमंडल का पतन शीघ्र हो सकता है। 1986 में संसद ने भारतीय डाकघर विधेयक पारित किया था। इसके कुछ उपबंधों पर प्रेस स्वतंत्र के विरुद्ध होने के आधार पर प्रेस ने आक्षेप किया था। राष्ट्रपति जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह ने इसे न तो अनुमति दी और न ही इनकार किया। अभी तक यह राष्ट्रपति की जेब में ही है। इस अधिकार के प्रयोग का यह प्रथम उदाहरण है। च, राज्य विधान को अननुज्ञात करना। भारत के राष्ट्रपति को संघ के विधान को वीटो करने की शक्ति के अतिरिक्त राज्य विधानमंडलों के ऐसे विधेयकों को जो राज्यपाल ने राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किए हैं अनुज्ञात करने या पुनर्विचार करने के लिए लौटाने की शक्ति है। यह अनुच्छेद 201 में निर्देशित है। राज्य विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित करना राज्यपाल के विवेकाधीन अधिकार है। जब कोई विधेयक राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर राज्यपाल को उसकी अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल उस पर अनुमति देने या अनुमति रोक देने के स्थान पर उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। यह स्थिति में आरक्षण अनिवार्य है, अर्थात यहाँ प्रश्नगत विधि से संविधान के अधीन उच्च न्यायालय की शक्तियों का अल्पीकरण होगा। अनुच्छेद 200 का यह निर्देशन है। यदि धन विधेयक इस प्रकार आरक्षित किया जाता है तो राष्ट्रपति या तो अनुमति देगा या इसे इनकार करेगा, किंतु धन विधेयक से भिन्न विधेयक की दिशा में राष्ट्रपति अनुमति देने या इनकार करने के स्थान पर राज्यपाल को यह निर्देश देगा कि वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को लौटा दे। तब विधानमंडल 6 मास की अवधि के भीतर विधेयक का पुनर्विचार करेगा और यदि वह पुनः पारित किया जाता है तो उसे पुनः राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, किंतु इस पर भी राष्ट्रपति उसे अनुमति दे यह अनिवार्य नहीं है। यह स्पष्ट है कि यदि कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जाता है तो उसका जब तक विधिक प्रभाव नहीं होगा जब तक राष्ट्रपति अपनी अनुमति की घोषणा न कर दे। संविधान ने अनुमति देने या विधारित करने की घोषणा करने के लिए कोई समय सीमा नहीं बांधी है। परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के विधेयक को अपने विचार प्रकट किए बिना अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख सकता है। विशुद्ध रूप से परिसंघीय संविधान में जैसा कि संयुक्त राज्य का है, राज्य अपने क्षेत्र में स्वशासी होते हैं और इस कारण परिसंघ की कार्यपालिका राज्य विधानमंडलों के विधेयकों को वीटो नहीं कर सकती। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में भी गवर्नर जनरल की अनुमति के लिए विधेयकों के आरक्षण किए जाने की का कोई उपबंध नहीं है और उसे राज्य विधान को अनुज्ञात करने की कोई शक्ति नहीं है, किंतु भारत ने कनाडा जैसे परिसंघ बनाया है। कनाडा के संविधान में गवर्नर जनरल को यह शक्ति तो है ही कि गवर्नर जनरल की अनुमति के लिए आरक्षित प्रांतीय विधान को अनुमति देने से इनकार कर सकता है। वह ऐसे प्रांतीय अधिनियम को भी अनुज्ञात कर सकता है जो गवर्नर द्वारा आरक्षित न किया गया हो। इन शक्तियों से कनाडा के गवर्नर जनरल को प्रांतीय विधान पर नियंत्रण प्राप्त होता है। इसके लिए अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में कोई स्थान नहीं है। कनाडा के गवर्नर जनरल ने इस शक्ति का प्रयोग डोमिनियन की शक्तियों पर अतिक्रमण के आधार पर भी किया और नीति के आधारों पर भी, जैसे अन्याय, आलोचना की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप आदि। इस विस्तार का प्रांतीय विधानमंडल डोमिनियन कार्यपालिका के अधीनस्थ है। भारत के संविधान में राष्ट्रपति को राज्य विधान से सीधे अनुज्ञात करने की शक्ति नहीं है। जो विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के लिए राज्य के राज्यपाल द्वारा आरक्षित किए जाते हैं, उन्हें अनुज्ञात करने का उपबंध है। राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश भी दे सकता है कि वह उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को लौटा दे। यह विधानमंडल सामान्य बहुमत से विधेयक को पुनः पारित कर देता है, तो विधेयक राष्ट्रपति को पुनर्विचार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। यदि वह पुनः इनकार करता है तो विधेयक समाप्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में राज्य विधान की शक्ति की दशा में राष्ट्रपति के वीटो का अध्यारोहण करने का कोई साधन नहीं है। इस प्रकार राज्य विधानसभा पर संघ का नियंत्रण अत्यंतिक है। संविधान ने कोई आधार बताकर यह मर्यादा नहीं लगाई है कि इन्हीं आधारों पर राष्ट्रपति अनुमति देने से इनकार कर सकेगा। राज्यपाल द्वारा आरक्षण का विचार करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, अतएव प्रत्यक्ष रूप से अनुज्ञात करने की शक्ति का प्रयोग प्रकारांतर से राज्यपाल के समय से राष्ट्रपति ही करता है। राज्य विधान के संबंध में राष्ट्रपति की ये शक्तियाँ केंद्रीय नियंत्रण के उन बंधनों को दृढ़ करती हैं जो भारत जैसे एकीकता की ओर झुकाव वाले परिसंघ में हैं। जो अध्यादेश निर्माण की शक्ति राष्ट्रपति ज अध्यादेश निर्माण की शक्ति राष्ट्रपति को उस समय अध्यादेश द्वारा विधान बनाने की शक्ति है जब उस विषय पर तुरंत ही संसदीय अधिनियम बनना संभव नहीं है। राष्ट्रपति की अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति या विस्तार उतना ही है जितना संसद की विधायी शक्ति का, अर्थात वह किसी भी ऐसे विषय से संबंधित हो सकता है जिसकी बाबत संसद को विधान विधायन का अधिकार है। इस पर भी वही संवैधानिक मर्यादाएं हैं जो संसदीय विधान पर लागू होती हैं। जैसे अध्यादेश से मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो सकता और संसद के अधिनियम से भी। वस्तुतः अनुच्छेद 13(3)(क) इस स्थिति को भली भांति सुनिश्चित करने के लिए अधिकथित करता है कि विधि में अध्यादेश सम्मिलित है। इस मर्यादा के अधीन रहते हुए अध्यादेश भी उसी प्रकार किसी भी प्रकृति का हो सकता है जैसे संसदीय विधान, अर्थात वह भूतलक्षी भी हो सकता है या किसी भी विधि या संसद के किसी अधिनियम का संशोधन या निरसन कर सकता है। अंतर इतना ही है कि अध्यादेश अस्थायी होता है। कार्यपालिका की अध्यादेश द्वारा विधायन की स्वतंत्र शक्ति भारत शासन अधिनियम को अवशेष चिन्ह है, किंतु भारत के संविधान में कोई उपबंध कई तात्विक बातों में 1935 के अधिनियम से भिन्न है। प्रथम, राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। भारत शासन अधिनियम 1935 में गवर्नर जनरल को अपने व्यक्तिगत निर्णय पर कार्य करने की शक्ति थी। द्वितीय, जब संसद का अधिवेशन होता है तब अध्यादेश संसद के समक्ष रखा जाना चाहिए। यदि संसद उसे पहले ही अनुमोदित नहीं कर देती तो वह अधिवेशन की तारीख से 6 सप्ताह की समाप्ति पर अपने ही निष्प्रभाव हो जाएगा। दूसरे शब्दों में अध्यादेश का जीवन काल पुनः संवेत होने की तारीख से 6 सप्ताह मात्र होता है। यदि सदनों का भिन्न भिन्न तारीखों को आहूत किया जाता है तो 6 सप्ताह की तारीख पश्चातवर्ती तारीख से गिनी जाती है। तृतीय, राष्ट्रपति को अध्यादेश बनाने की शक्ति तभी होती है जब दोनों में से किसी एक सदन का सत्रावसान हो गया है या अन्यथा सत्र में नहीं है, और इसलिए संसद द्वारा विधि अधिनियमित करना संभव नहीं है। जब दोनों सदन सत्र में होते हैं तब उसे यह शक्ति नहीं होती। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्माण की शक्ति विधान बनाने की समानांतर या सहवर्ती शक्ति नहीं है। यह तब उपलब्ध नहीं होती जब विधानमंडल विधायन करने के लिए समर्थ हैं। अमेरिकी संविधान की में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के कारण कार्यपालिका की विधायी शक्ति कल्पना के बाहर ही वस्तु है। इस इंग्लैंड में भी केस ऑफ प्रोक्लेमेशंस 1610 के पश्चात यही स्थिति है, किंतु संसद के अवकाश के समय में अध्यादेश की शक्ति को भारत में इस आधार पर न्यायोचित ठहराया गया है कि जब दोनों सदन सत्र में नहीं है तब आवश्यकता की पूर्ति के लिए राष्ट्रपति को यह शक्ति होनी चाहिए। विधानमंडल के सत्र में न होने पर भी राष्ट्रपति तब तक कोई अध्यादेश प्रख्यापित नहीं कर सकता जब तक कि उसका यह समाधान नहीं हो जाता कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिसके कारण तुरंत कार्रवाई करने के लिए आवश्यक हो गया है। अनुच्छेद 133 का खंड एक यह कहता है, उस समय को छोड़कर जब संसद में दोनों सदन सत्र में है, यदि किसी समय राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है, तो वह ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा जो उसे उन परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत हों। तुरंत कार्रवाई का अनुच्छेद 352 के अधीन आपात से अनिवार्य संबंध नहीं है, अतएव अध्यादेश का प्रख्यापन किसी बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने पर निर्भर नहीं है। इस बात की कसौटी इतनी है कि जिन परिस्थितियों के कारण विधान आवश्यक हो गया है वे इतनी गंभीर और आसन्न है कि विधानमंडल को आहूत करने और विधान के समान प्रक्रम में विधेयक को पारित कराने में जो विलंब होगा वह सहन नहीं किया जा सकता। किंतु ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है या नहीं, इसका एकमात्र निर्णायक स्वयं राष्ट्रपति ही होता है। कुछ आरंभिक वादों में यह अभी निर्धारित किया गया है, चाहे वह अभी कथन किया गया हो या शक्ति का प्रयोग सद्भावपूर्वक नहीं किया गया हो, तो भी न्यायालय इस बात की जांच नहीं कर सकता कि समाधान का औचित्य था या नहीं। किंतु यदि अध्यादेश की अवधि समाप्त होते ही उसे पुनः प्रख्यापित किया जाता है और ऐसा बार बार किया जाता है तो यह प्रयोग संविधान प्रदत्त अधिकार का दुरुपयोग और संविधान के प्रति कपट है। कूपर के वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह मत अभिव्यक्त किया है कि राष्ट्रपति के समाधान की वास्तविकता को न्यायालय में संभवतः इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह असद्भावपूर्ण था। उदाहरणार्थ, जहां राष्ट्रपति ने संसद के किसी सदन का सत्रावसान किसी विवादास्पद विषय पर अध्यादेश बनाने के लिए किया है जिससे कि विधानमंडल के निर्णय से बच निकला जाए। पहला, इंदिरा सरकार चाहती थी कि अध्यादेश निर्माण में न्यायिक हस्तक्षेप को रोक दिया जाए। इस उद्देश्य से अनुच्छेद 123 में खंड 4 जोड़कर यह अधिकथित किया गया कि राष्ट्रपति का समाधान अंतिम होगा और किसी न्यायालय में किसी आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। दूसरा, जनता सरकार ने इस परिवर्तन को उलट दिया। उसका अंतिम परिणाम यह है कि कूपर के वाद में जो संप्रेषण किया गया वह प्रतिष्ठित हो गया और असद्भाव की दशा में न्यायिक हस्तक्षेप के लिए द्वार खुल गया। असद्भाव साबित करना कठिन होगा, किंतु कूपर के संप्रेषण के पुनरुज्जीवित हो जाने से अध्यादेश बनाने के उद्देश्य से संसद की किसी सदन का सत्रावसान करने की मनमानी शक्ति पर रोक लग जाएगा। यह सच है कि अध्यादेश बनाने की शक्ति का प्रयोग तो मंत्रिमंडल की सलाह पर किया जाता है, मंत्रिमंडल का संसद में बहुमत होता है, अतएव इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि सरकार संसद के अधिनियम के स्थान पर अध्यादेश द्वारा विधायन करना चाहती है, क्योंकि यदि अध्यादेश प्रख्यापित करने के स्थान पर विधेयक लाया जाता है तो बहुमत से सुनिश्चित हो जाता है कि विधेयक पारित हो जाए, किंतु यदि तत्कालीन सरकार के साथ अरे कुछ नहीं हुआ, उसके लिए चिंता न करें, भारी बहुमत में न हो तो यह तर्क नहीं चल सकता। ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 123 सरकार को अस्थायी अवधि के लिए अध्यादेश के विधायन करने का सामर्थ्य देगा, जब सरकार निश्चित रूप से यह नहीं कह सकती कि विधेयक का संसद में समर्थन होगा। जब सरकार का संसद में बहुमत जब सरकार का संसद में स्पष्ट बहुमत होता है, तब भी जब विधेयक पूरा स्थापित होता है और संसद में चर्चा होती है तो विधेयक के गुण दोषों का राष्ट्रव्यापी प्रचार होता है और दोनों सदनों को चर्चा से प्रकट होने वाले उस दोषों को संशोधन करने के सुधारने का अवसर मिलता है। जब सरकार अध्यादेश के विधान बनाती है तो यह सब नहीं हो सकता। यह स्पष्ट है कि यह शक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर प्रयोग की जाएगी, फिर भी शक्ति के दुरुपयोग की संभावना है, क्योंकि मंत्री की संसद में चर्चा से बचने के लिए अध्यादेश के लालच में पड़ सकते हैं और इस उद्देश्य को सामने रखकर राष्ट्रपति को भी इस समय संसद का सत्रावसान करने की सलाह दे सकते हैं।